एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व के श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
ग्रंथ सार में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अलका जोशी के बहुत ही चर्चित उपन्यास द हीना आर्टिस्ट के बारे में।
जी हाँ, एक बहुत ही दिलचस्प कहानी।
हाँ, और ये उपन्यास हमें ले जाता है सीधे 1950 के दशक के जयपुर, वो गुलाबी शहर जो आज़ादी के बाद कह सकते हैं कि अपनी पहचान तलाश रहा था।
बिल्कुल, एक तरफ सदियों पुरानी परंपराएं और दूसरी तरफ वो आधुनिकता की एक नई लहर।
और इसी उथल पुथल के बीच है हमारी मुख्य पात्र लक्ष्मी शास्त्री।
लक्ष्मी एक ऐसी औरत जो अपने अतीत से भागकर जयपुर में अपनी एक नई जिंदगी बनाने की कोशिश कर रही है, और ये कोशिश आसान नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आज हम इसी कहानी की गहराइयों में उतरेंगे, लक्ष्मी के सफर को समझेंगे, उसके सामने जो चुनौतियां आती हैं उन्हें देखेंगे।
हाँ, और जो महत्वपूर्ण विषय उपन्यास उठाता है, जैसे औरतों की आज़ादी, परंपरा आधुनिकता का वो टकराव, समाज में ऊंच नीच का भेद
और रहस्यों का बोझ, इस सब पर बात करेंगे। और हाँ, अलका जोशी की लिखने की जो शैली है उस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे।
बिल्कुल, और ये भी याद रखना ज़रूरी है कि ये उपन्यास रीज विद स्पून बुक क्लब पिक रहा है और जयपुर ट्रिलॉजी की पहली किताब है।
हाँ, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं लक्ष्मी शास्त्री से। कौन है ये लक्ष्मी?
लक्ष्मी लगभग 30 साल की है, 13 साल हो गए उसे अपना गांव छोड़े हुए। एक अपमानजनक शादी से भागकर वो जयपुर आई थी।
तो अब वो जयपुर में क्या कर रही हैं?
अब वो कोई मामूली औरत नहीं है, वो जयपुर के अमीर ऊंचे तबके की सबसे जानी मानी, सबसे हुनरमंद मेहंदी आर्टिस्ट है। लोग उसके काम के दीवाने हैं।
अच्छा, सिर्फ मेहंदी आर्टिस्ट या कुछ और भी है? मुझे याद है पढ़ते हुए लगा था कि वो सिर्फ कलाकार नहीं है।
महिलाओं की राजदार है, उनकी सहेली उनके सारे सीक्रेट्स जानती हैं।
और वो जड़ी बूटियों वाला पहलू?
हाँ, वो भी, वो जड़ी बूटियों की जानकार है। खूबसूरती बढ़ाने वाले लेप तो बनाती ही है, लेकिन उसका असली हुनर, या कह लीजिए जो उसे एक अलग ताकत देता है, वो है उसकी गोपनीय दवाएं।
गोपनीय दवाएं मतलब?
मतलब वो दवाएं जो अनचाहे गर्भ से बचने या उससे छुटकारा पाने में मदद करती हैं, ये वो पर्दे के पीछे करती है।
ओ, तो ये तो उसे बहुत शक्तिशाली भी बनाता होगा और खतरे में भी डालता होगा।
बिल्कुल, यही तो इस कहानी की जटिलता है। देखिए, उसने पारंपरिक हुनर, मेहंदी, जड़ी बूटी का इस्तेमाल किया एक ऐसी दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए जहां मर्दों का बोलबाला है।
हाँ, दूसरों के राज जानना उसे ताकत देता है।
पर वही राज उसे बहुत नाजुक भी बनाते हैं। उसकी पूरी जिंदगी एक तरह से एक सीक्रेट है, एक गलत कदम और सब खत्म।
और इन सब के पीछे उसकी अपनी एक बहुत बड़ी इच्छा है ना?
हाँ, एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा, जयपुर में अपना खुद का घर बनाना।
वो घर उसके लिए क्या मायने रखता है?
वो सिर्फ ईंट पत्थर का मकान नहीं, वो उसकी आजादी का सबूत है, उसकी मेहनत का फल, उसकी अपनी पहचान। उसने बहुत मेहनत से पैसे जोड़े हैं इस सपने के लिए।
समझ सकती हूँ, अपनी शर्तों पर जीने की इच्छा, लेकिन ये सब करने के लिए उसे अपना अतीत छुपाना पड़ता होगा।
जी हाँ, बिल्कुल, उसका अतीत एक बंद दरवाजा है, उसकी पूरी जिंदगी एक बहुत बहुत सावधानी से बुना गया जाल है।
और इस सफर में उसका कोई साथी भी है?
हाँ, एक लड़का है, मलिक, वफादार है, समझदार है, लक्ष्मी का दाहिना हाथ कह सकते हैं, उसका बहुत ध्यान रखता है।
तो लक्ष्मी ने अपनी एक दुनिया बना ली है बहुत संभाल कर, लेकिन?
लेकिन अतीत दरवाजा खटखटा ही देता है।
हाँ, कहानी में भूचाल तब आता है जब उसका पति हरी, जिसे वो सालों पहले छोड़ आई थी,
अचानक जयपुर पहुंच जाता है बिना किसी खबर के।
और वो अकेला नहीं है?
नहीं, उसके साथ एक 13 साल की लड़की है, राधा। हरी बताता है कि ये लक्ष्मी की छोटी बहन है जो लक्ष्मी के गांव छोड़ने के बाद पैदा हुई थी। और माँ बाप?
हरी ये भी बताता है कि माँ बाप अब नहीं रहे।
ये तो लक्ष्मी के लिए बहुत बड़ा धक्का होगा, उसकी पूरी दुनिया हिल गई होगी।
बिल्कुल, उसका सजाया गुछाया जीवन, उसकी बनाई हुई व्यवस्था, सब उलट पुलट हो जाता है। अतीत सामने आ खड़ा होता है, उसकी आजादी पर खतरा मंडराने लगता है।
और ये अनचाही जिम्मेदारी का बोझ, यहीं से वो असल संघर्ष शुरू होता है।
बिल्कुल,
है ना, अपनी व्यक्तिगत इच्छाएं बनाम परिवार और समाज की उम्मीदें।
जी,
और राधा का किरदार भी कहानी में एक नया रंग भरता है। वो गांव से आई सीधी साधी लड़की है, शहर की चकाचौंध देखकर हैरान है।
उसमें एक अल्हड़पन भी है, एक विद्रोह भी।
हाँ बिल्कुल, वो नई चीजें आजमाना चाहती है, मॉडर्न दिखना चाहती है, लेकिन अनुभव नहीं है, थोड़ी जिद्दी भी है, उसे लक्ष्मी का कंट्रोल पसंद नहीं आता।
तो दोनों बहनों में तनाव पैदा होता है।
हाँ होता है। लक्ष्मी जिसने दुनिया देखी है वो राधा को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव है, शायद थोड़ी सख्त भी, वो उसे बचाना चाहती है।
पर राधा को वो बंधन लगता होगा।
बिल्कुल, ये पीढ़ी का अंतर भी है, अनुभवों का भी।
कहानी में और भी कुछ अहम किरदार हैं जो उस वक्त के समाज को दिखाते हैं।
हाँ, जैसे समीर सिंह, एक पढ़ा लिखा मॉडर्न आर्किटेक्ट जो लक्ष्मी का घर डिजाइन कर रहा है। दिखने में आकर्षक, प्रगतिशील, पर क्या वो भरोसे के लायक है?
सवाल तो उठता है। और वो पार्वती सिंह, लक्ष्मी की अमीर ग्राहक।
हाँ, पार्वती सिंह वो उस ऊंचे समाज के दोहरेपन का प्रतीक है, बाहर से सभ्य लेकिन अंदर से बहुत मतलबी।
और एक उम्मीद की तरह डॉक्टर जयकुमार भी हैं।
जी, डॉक्टर जयकुमार एक समझदार नेक डॉक्टर, वो लक्ष्मी के ज्ञान को, उसकी जड़ी बूटियों के समझ को पहचानते हैं, इज्जत देते हैं, शायद वो लक्ष्मी के लिए एक अलग रास्ता खोल सकते हैं।
इन किरदारों से उस समय का समाज, वर्ग भेद, ऊंच नीच, ये सब साफ दिखता है। लक्ष्मी कैसे इन सब के बीच अपना रास्ता बनाती है।
हाँ, और उधर राधा वो शहर की जिंदगी से बोर होने लगती है, लक्ष्मी के कंट्रोल से परेशान होकर वो रवि सिंह के चक्कर में पड़ जाती है।
रवि सिंह, ये कौन है?
एक अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा, लापरवाह अय्याश किस्म का, जिसके बारे में बातें अच्छी नहीं है। लक्ष्मी उसे बहुत समझाती है, रोकती है,
लेकिन राधा नहीं मानती।
नहीं, वो प्यार और विद्रोहों में अंधी हो चुकी है, वो लक्ष्मी की चेतावनी अनसुनी कर देती है।
यहाँ से चीजें और बिगड़ती है ना, लक्ष्मी अपने काम में, घर के सपने में इतनी उलझी है कि
वो राधा पर पूरा ध्यान नहीं दे पाती, या शायद देना नहीं चाहती। दोनों बहनों के बीच फासला बढ़ता जाता है, अनकहे राज दीवारें खड़ी कर देते हैं।
और यही वो रहस्यों वाली बात फिर सामने आती है, जो रहस्य लक्ष्मी की ताकत थे
वही अब उसकी कमजोरी बन जाते हैं, उसका अपना अतीत, उसका गुप्त काम, और अब राधा का ये रिश्ता, सब मिलकर एक टाइम बम जैसा बन जाता है।
और समाज का पाखंड भी खुलकर सामने आता है।
जरा सी चूक पर उसे बदनाम करने में देर नहीं लगाते।
बिल्कुल।
और फिर वो पलाता है जब सब कुछ फट पड़ता है।
हाँ।
कहानी का चरमोत्कर्ष, पता चलता है कि राधा गर्भवती है।
और रवि सिंह?
वो साफ मुकर जाता है, जैसा कि लक्ष्मी को डर था।
और फिर
ये खबर तो जयपुर में
आग की तरह फैल जाती है।
और सारा इल्जाम किस पर आता है?
लक्ष्मी पर।
बिल्कुल, समाज उसे ही दोषी ठहराता है, चरित्रहीन, गैर जिम्मेदार। उसकी सालों की मेहनत, उसकी इज्जत, सब एक पल में खत्म।
उसकी ग्राहकियों से छोड़ देती हैं।
हाँ, पार्वती सिंह सबसे आगे रहती हैं, सब उससे मुंह मोड़ लेते हैं, उसका काम बंद हो जाता है।
लेकिन सबसे बड़ा झटका तो वो घर वाला होता है ना।
हाँ, वो सबसे दिल तोड़ने वाला पल है। समीर सिंह उसे बताता है कि उसके घर की फाइनेंसिंग रोक दी गई है, उसका वो सपना अधूरा रह जाता है।
ओह, तो लक्ष्मी एक तरह से सब कुछ खो देती है, पैसा, इज्जत, सपना, सब कुछ।
समाज ने उसे बाहर कर दिया है, उसका भविष्य अंधकारमय दिखता है।
ये उसके लिए सिर्फ बाहरी संकट नहीं, ये अंदर का संकट भी है।
बिल्कुल,
नैतिक सवाल उठते हैं।
बिल्कुल, परंपरा और आधुनिकता का वो संघर्ष फिर से एक भयानक रूप में सामने आता है। उसे अपनी बहन को बचाने के लिए उसी पारंपरिक ज्ञान का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसे समाज अब गलत और खतरनाक मानता है।
क्या सही है, क्या गलत, समाज के नियम या अपनों की जान, बहुत मुश्किल चुनाव।
बहुत मुश्किल। और बेहद हताशा में लक्ष्मी अपनी जान और इज्जत दांव पर लगाकर अपनी जड़ी बूटियों के ज्ञान से राधा का गर्भपात करती है।
ये तो बहुत ही दर्दनाक और खतरनाक प्रक्रिया रही होगी।
हाँ, शारीरिक रूप से भी और भावनात्मक रूप से भी दोनों बहनें टूट जाती हैं, लेकिन शायद इसी साझा दर्द से, इसी मुश्किल घड़ी से उनके बीच का रिश्ता और गहरा हो जाता है।
एक अजीब तरीके से ये उन्हें जोड़ देता है।
हाँ, वे एक दूसरे का सहारा बनती हैं, उन्हें एहसास होता है कि दुनिया में वो एक दूसरे के लिए हैं।
तो अब लक्ष्मी जयपुर में नहीं रह सकते।
नहीं, उसे समझ आ जाता है कि यहाँ उसके लिए रास्ते बंद हैं। वो राधा को लेकर गांव लौटती है, वहाँ माँ बाप की मौत की पुष्टि होती है।
गांव में उसे कैसा बर्ताव मिलता है?
हैरानी की बात है कि वहाँ उसे गांव की दाइयों और वैद्य से सहानुभूति मिलती है। यहाँ तक कि जयपुर की वो वेश्याएं जिनकी वो मदद करती थी, वो भी उसके साथ खड़ी होती हैं।
अच्छा, ये तो अप्रत्याशित है।
हाँ, और ये अनुभव लक्ष्मी को बदल देता है। उसे लगता है कि जिस चीज के पीछे वो भाग रही थी, वो शायद उतनी जरूरी थी ही नहीं। वो महत्वाकांक्षा खोखली लगने लगती है।
तो उसके अंदर एक बदलाव आता है।
हाँ,
एक गहरा बदलाव। उसे समझ आता है कि अकेली आजादी शायद सच्ची आजादी नहीं है। परिवार सिर्फ खून के रिश्ते नहीं होते। मलिक के प्रति उसकी जिम्मेदारी, राधा के साथ उसका रिश्ता, ये ज्यादा मायने रखते हैं।
वो समझने लगती है कि शक्ति शायद अकेले होने में नहीं बल्कि जुड़े रहने में।
बिल्कुल, आपसी निर्भरता में।
और इसी नई समझ के साथ वो आगे बढ़ती है।
वो राधा को एक बेहतर भविष्य देने का फैसला करती है। उसे शिमला के एक स्कूल भेजती हैं।
ये उसके लिए एक त्याग है।
हाँ, बहुत बड़ा त्याग। और तभी डॉक्टर जयकुमार उसके पास एक प्रस्ताव लेकर आते हैं।
शिमला में क्लिनिक वाला प्रस्ताव?
जी हाँ, शिमला में एक नया सामुदायिक चिकित्सालय खुल रहा है और वहाँ डिस्पेंसरी संभालने का काम। एक ऐसा मौका जहाँ वो अपने ज्ञान का सही सम्मानजनक इस्तेमाल कर सकती है, लोगों की मदद कर सकती है।
तो वो ये स्वीकार कर लेती है।
हाँ, और वो मलिक को भी गोद ले लेती है। उसे अपने साथ शिमला ले जाती है ताकि वो पढ़ सके। तो कहानी के अंत में वो जयपुर वाला अपना पहला सपना पीछे छोड़ देती है
और एक नई, शायद ज्यादा शांत पर ज्यादा सार्थक जिंदगी चुन लेती है।
बिल्कुल, एक ऐसी जिंदगी जो सेवा, समुदाय और रिश्तों पर आधारित है।
अलका जोशी ने कहानी कहने का जो तरीका अपनाया है वो भी बहुत असरदार है। पूरी कहानी लक्ष्मी की जुबानी है।
हाँ, फर्स्ट पर्सन नरेशन। इससे हम पाठक सीधे लक्ष्मी के मन में उतर जाते हैं। उसके डर, उसकी उम्मीदें, सब कुछ महसूस करते हैं।
और प्रतीकों का इस्तेमाल भी बहुत खूबसूरती से किया गया है, जैसे मेहंदी।
हाँ, मेहंदी कला भी है, आजादी का जरिया भी, लेकिन उसकी अस्थाई प्रकृति लक्ष्मी की स्थिति को भी दर्शाती है।
और वो घर जो पहले सपना था फिर एक टीस बन गया।
और जड़ी बूटियां, वो ज्ञान, शक्ति और खतरा, तीनों का प्रतीक है।
बिल्कुल।
और जयपुर शहर जैसे खुद एक किरदार बन गया है। उसके रंग, उसकी गंध, गलियां, सब आंखों के सामने आ जाते हैं।
हाँ, पढ़ते हुए लगता है जैसे हम वहीं हैं। और कहानी में आगे क्या होने वाला है इसके संकेत भी मिलते रहते हैं ना।
वो पूर्वाभास
जी,
लक्ष्मी की चिंताएं, लोगों की कानाफूसी, ये सब आने वाले संकट की आहट देते हैं।
कुछ संवाद भी याद रह जाते हैं, जैसे लक्ष्मी का सोचना कि आजादी मांगी नहीं जाती, ली जाती है हर छोटे चुनाव से।
हाँ, और वो बात कि सबसे जरूरी कहानियां वो होती हैं जिन्हें हम छुपाते हैं, ये उपन्यास में रहस्यों के महत्व को दिखाता है।
तो कुल मिलाकर ये एक ऐसी कहानी है जो सोचने पर मजबूर करती है। मुझे लगता है ये सिखाती है कि सच्ची आजादी शायद अकेले भागने में नहीं बल्कि जिम्मेदारियां निभाने में है, रिश्तों को सहेजने में है।
हाँ, और ये भी कि जिंदगी में असली मतलब शायद तब मिलता है जब हमारे बड़े सपने टूट जाते हैं, तब हमें एक नया, ज्यादा गहरा रास्ता मिलता है। ये कहानी इंसान के जज्बे की, मुश्किलों से लड़ने की और फिर से खड़े होने की कहानी है।
तो सोचने वाली बात ये रह जाती है कि क्या लक्ष्मी की कहानी, उसका संघर्ष आज भी उतना ही मायने रखता है? क्या आज भी औरतों को अपनी इच्छाओं और समाज की उम्मीदों के बीच ऐसे ही जूझना पड़ता है?
यह संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।